हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। भगवद गीता का ये दूसरा अध्याय है, जिसका शीर्षक है गीता का सार। पिछले अध्याय का शीर्षक क्या था? प्रथम अध्याय का अर्जुन विषाद योग। हालांकि इस दूसरे अध्याय को सांख्य योग भी कहा गया है, परंतु श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता यथारूप में दूसरे अध्याय का शीर्षक दिया है गीता का सार, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। और इसकी व्याख्या हमने पहले भी की थी। कारण यह है कि भगवान इस आशा में थे कि अर्जुन के जो प्रश्न प्रथम अध्याय में पूछे अर्जुन ने, केवल उन प्रश्नों को लेकर भगवान उत्तर देना प्रारंभ किए थे। और क्योंकि स्थिति ये थी कि शंख बज चुके थे, दोनों सेना तैनात और तैयार एक दूसरे से युद्ध करने के लिए, तो समय ज्यादा नहीं था। और भगवान अर्जुन को, हालांकि भगवान जो भी कुछ कहते हैं वो संक्षिप्त रूप में भी कहें, तो भी भगवान की वाणी ऐसी है कि जो संदेश है दिव्य ज्ञान का वो पूरा ठीक ठीक पहुंच जाता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं एलोक्वेंस, मिनिमम वर्ड्स मैक्सिमम मैसेज। परंतु भगवान जब देखे कि अर्जुन की उत्सुकता इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की इतनी है कि अर्जुन धीरे धीरे ये सांख्य योग से ऊपर उठकर फिर कर्म योग, फिर अष्टांग ज्ञान और अंततः भक्ति, ये सब के प्रश्न अर्जुन जब पूछने लगे, तो भगवान को प्रोत्साहन अर्जुन के प्रश्नों ने दिया। पूरे 18 अध्याय और 700 श्लोक जब उन्होंने सुनाए। परंतु ये ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान का मनोभाव इस अध्याय या इन श्लोकों को सुनाते समय क्या था, कि भगवान सारांश रूप में वो ज्ञान अर्जुन को इन कुछ श्लोकों में सुनाना चाहते, तो इसलिए एक एक श्लोक वो भगवान इस मनोभाव से सुना रहे हैं कि अर्जुन तुरंत अब इस दिव्य ज्ञान को समझकर गांडीव उठाकर युद्ध प्रारंभ करेंगे। तो इसलिए हालांकि एक एक श्लोक समान हमें दिख रहे होंगे इनका अनुवाद, परंतु भगवान का मनोभाव है कि भगवान सारांश रूप में पूरा दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान, दिव्य ज्ञान सब कुछ इस एक अध्याय में देना चाहते हैं। तो हमने पिछले बुधवार को श्लोक लिया, एक प्रसिद्ध श्लोक जिसमें भगवान व्यावहारिक ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, कि शरीर एक वस्त्र के समान है और जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा वो पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को आत्मा वो धारण करता है। तो अब इसके आगे भगवान सोचे कि शरीर पर कुछ केंद्र रखा है, पिछले श्लोक में शरीर के ऊपर केंद्र था, तो अब फिर से शरीर से आत्मा के ऊपर भगवान अर्जुन का केंद्र ला रहे हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद इस प्रकार से है, आत्मा को न कोई शस्त्रों से काट सकता है, न अग्नि से जला सकता है, न जल से गीला कर सकता है, न वायु से सुखा सकता है। तो यहां पर आत्मा के चार गुण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो पिछला जो श्लोक जिसमें वस्त्र का उदाहरण लिया था भगवान ने, वस्त्र रूपी शरीर किस प्रकार से जीर्ण होता है, तो शरीर का जीर्ण होना और फिर नया शरीर मिलना और वो भी जीर्ण होना, फिर नया शरीर मिलना वो भी जीर्ण होना, तो वस्त्र की तुलना शरीर से या शरीर की तुलना वस्त्र से कर कि कैसे शरीर जो है ये नाशवान है, ये जीर्णवान है, और आज का श्लोक आत्मा कैसे उसके विपरीत है। जैसे वस्त्र को काटा जा सकता है, आत्मा को नहीं, आज के श्लोक में क्या है? तो अर्जुन ये ना समझे कि आत्मा भी उसी प्रकार से जीर्ण हो जाएगा जैसे शरीर। तो तुरंत भगवान देखो कितना सावधान है कि वस्त्र का उदाहरण देने के पश्चात कहते हैं कि हां, वस्त्र को कोई काट सकता है, वस्त्र को कोई गीला कर सकता है, जला सकता है, सुखा सकता है, यह स्वाभाविक व्यावहारिक उदाहरण है, लेकिन आत्मा को यह सब कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए तुरंत अब इस श्लोक में आत्मा का अव्यय स्वरूप जो कि विपरीत है शरीर के व्यय स्वरूप से। तो ये जो चार गुण भगवान ने कहे, जीवात्मा के शरीर विरोधी गुण है। जीवात्मा को शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, जीवात्मा को अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, जल से गलाया नहीं जा सकता और हवा से सुखाया नहीं जा सकता। अब रणभूमि पर अर्जुन का अनुभव शरीरों के साथ क्या रहा, ये सब चार चीजें कि जितने भी युद्ध अर्जुन ने लड़े उसमें शरीरों के साथ अर्जुन के शस्त्रों ने किया क्या, जलाया, अग्नि शस्त्र से किसी को जलाया, फिर वायव्य अस्त्र से या शस्त्र से किसी को सुखा दिया, फिर गला दिया और काट दिया। तो ध्यान में रखना होगा कि भगवान एक योद्धा को आत्मा का स्वरूप समझा रहे हैं। अर्जुन कोई बहुत बड़े पुस्तकीय ज्ञानी नहीं, एक योद्धा रणभूमि पर, तो भगवान की व्याख्या भी उस प्रकार से होगी ना, काटना, जलाना, गिलाना, ये सब कुछ। तो अर्जुन ये भाषा ठीक से समझ रहे थे और बिल्कुल विपरीत शरीर के, तो विरोधी गुण, शरीर के विरोधी गुण। जैसे कि हम अपने गीता कोर्स में कहते हैं कि एक है मैटर और है एंटी मैटर। तो विरोधी गुण से एक जो उसका विपक्ष है उसके उसके गुण समझ में आते हैं। तो केवल शरीर को देखने से समझ में आ जाता है कि आत्मा के गुण क्या होने चाहिए, इसके विपरीत सब शरीर के गुण। तो यहां पर एक और मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे कि भगवान आत्मा का विज्ञापन कर रहे हैं बहुत ही निपुणता से। कृष्ण इज एडवर्टाइजिंग द ग्लोरीज ऑफ जीवात्मा द सोल। तो सर्वप्रथम हम अब एक एक जो भगवान ने यहां पर आत्मा के गुण बताए हैं एक एक गुण को लेते हैं, और श्रील प्रभुपाद ने और हमारे आचार्यों ने क्या व्याख्या की है उसकी। जीवात्मा को शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता। हमें ये तकनीकी रूप से समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक वैज्ञानिक और एक है मायावादी, ये दोनों जिनके ऊपर श्रील प्रभुपाद अक्सर इतना प्रहार किया करते थे, मायावादी और वैज्ञानिक। तो मायावादियों की जो व्याख्या है वो कुछ इस सिद्धांत के साथ नहीं चलती, उसकी चर्चा हम अगले श्लोक को जब लेंगे, क्योंकि अगले श्लोक में भी भगवान कुछ यही कह रहे हैं, अच्छेद्योहम अधायोयम अक्लेद्यो सोष्य एवच। अगले श्लोक में भी भगवान ने यही कुछ कहा है, परंतु उसमें मायावाद सिद्धांत का खंडन ज्यादा हुआ। इसलिए मायावाद सिद्धांत है कि हम सब परम सत्य जिसका खंडन हुआ अर्थात काटा गया, और हम अब विच्छेदित परम सत्य। देखिए उनके शब्द भी समझ में नहीं आते, अनविच्छेदित परम सत्य जो भौतिक संसार में विच्छेदित हो जाता है और फिर अपनी साधना से फिर वो विच्छेदित परम सत्य अनविच्छेदित हो जाता है, उसे कहते हैं मोक्ष। हरे कृष्णा। तो उसे ये वो कह रहे हैं कि आत्मा काटा गया, यहां पर भगवान कहते हैं नहीं बिल्कुल। तो उसकी व्याख्या हम अगले सत्र में करेंगे। यहां पर अब एक जो वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि सबसे पहले ये आप आत्मा आत्मा कहते हो तो आत्मा है कहां? उपनिषदों के अनुसार आत्मा प्राणश्चित्तम, चित्त हृदय, हृदय जहां पर स्थित है वहां पर आत्मा स्थित होता है। तो अब वैज्ञानिक ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि ऐसे कैसे बोल सकते हो आप कि आत्मा वहां पर स्थित है और आत्मा काटा नहीं जा सकता। तो ये वैज्ञानिक एक उदाहरण देते हैं इसका, छिपकली और ये है केंचुआ, अर्थवर्म क्या? हाँ, तो अब ये दो उदाहरण वो वैज्ञानिक लेकर देते हैं कि जब ये केचुए को बीच में से कोई काट दे या छिपकली की पूंछ कई बार थोड़ा कहीं अटक के कट जाती तो क्या देखा जाता है कि वो केचुआ दो भाग में हो गया लेकिन फिर भी हिल रहा है। देखा, वो दो भाग में हो गया फिर भी दोनों भाग हिल रहे हैं। तो अब उनका प्रश्न है कि आपका आत्मा जो कहीं हृदय में किधर स्थित था वो यहां से वहां गया या काटा गया आत्मा? या तो आत्मा काटा गया, अब दोनों में आत्मा हो गया ना, दोनों हिल रहे। छिपकली की पूंछ कई बार कट जाती है तो वो पूंछ भी वो तड़पती दिखती है, और वो जो दूसरा भाग है छिपकली का, वो भी जीवित है। तो अब ये आपका भगवद गीता का सिद्धांत यहां कैसे सिद्ध कर रहा है कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता। उदाहरण, इसके उत्तर में एक उदाहरण है सूर्यास्त। जब सूर्यास्त होता है तो तुरंत अंधेरा हो जाता है, हाँ या ना? नहीं, उसे कहते हैं ट्वाइलाइट टाइम, ट्वाइलाइट आवर्स। सूर्य नहीं है परंतु फिर भी उजाला है कुछ समय तक। तो उसी प्रकार से जब किसी केचुए को काटा जाता है तो कुछ समय तक वो चेतना उसमें कायम रहती है, परंतु कुछ समय पश्चात वो चेतना, जैसे कि सूर्य की रोशनी, कुछ समय पश्चात वो फिर फीकी होकर अंधेरा छा जाता है, उसी प्रकार से वो चेतना भी अपनी शक्ति जब खो बैठती है तो वो दूसरा भाग भी मृत हो जाता है। तो हमारे आचार्य सूर्यास्त का उदाहरण देते हैं। तो इसे ये सिद्ध हुआ कि आत्मा वो कभी काटा नहीं जा सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणि। तो विशेष रूप से भगवान ने शस्त्र, अभी और भी किसी वस्तु से वस्तु को काटा जा सकता है, चाकू से और किसी से, लेकिन शस्त्र, क्योंकि अर्जुन के मन में यही एक डर था कि मेरे शस्त्र भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इन सब को काटेंगे, इनके शरीरों को काटेंगे। तो यहां पर खैर भगवान तो आत्मा के विषय में कह रहे हैं कि आत्मा को नहीं कोई काट सकता, परंतु यदि ये उदाहरण लें कि आत्मा छोड़ दीजिए, शरीर को लो, कि शरीर के किसी भाग को काट दिया जाए फिर भी दिखता है कि शरीर जीवित है। कईयों की उंगली कट जाती है, हाथ कट जाता है, पैर कट जाते हैं। इसी संदर्भ में एक बहुत प्रेरणास्पद उदाहरण आपके सामने हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। ये एक ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर जो भी वैज्ञानिक आविष्कार है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका बहिष्कार ये एक व्यक्ति अपने जीवन से कर रहे हैं, और कैसे भगवान की कृपा, प्रकृति की देन से ये एक व्यक्ति जिनका यहां पर नाम लिखा गया है पेंग शुई लिन, और ये उनका कद बताया गया है चीन के रहने वाले। ये तो यहां पर भगवान जो बोल रहे हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि आत्मा के विषय में, यहां पर हम सबसे पहले शरीर के विषय में देखेंगे। इतना ही है केवल इनका शरीर, इस व्यक्ति का, ये जीवित व्यक्ति है और ये इतना ही इस व्यक्ति का शरीर है। हालांकि ऐसा ये व्यक्ति पैदा नहीं हुआ था, लेकिन एक बहुत भयावह एक्सीडेंट में इस व्यक्ति का केवल आधा शरीर बचा है, जैसे यहां पर देख रहे हैं, लेकिन व्यक्ति जीवित है। सोचिए इस हालत में व्यक्ति जीवित है, और यहां पर इस व्यक्ति को अब ये लोग चलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हरे कृष्ण। वही व्यक्ति है जिसका पहला चित्र हमने देखा था ये, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि आत्मा का जो गुण है, आत्मा की शक्ति इतनी है कि यदि शरीर भी इस अवस्था में आ जाए तो आत्मा का ये जो गुण भगवान बता रहे हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणि, वो शरीर को जिलाए रखता है, शरीर को वो कायम रखता है। अब यहां पर इस व्यक्ति की इस हालत को देखकर हो सकता है कि हमें विश्वास भी ना हो कि हम क्या कभी इस हालत में जी पाएंगे। तो इस व्यक्ति को जीने की प्रेरणा कहां से मिल रही है? आत्मा से। वो जो प्रेरणा इसको जीने की मिल रही है, आत्मा से मिल रही है। और कई बार हमारा पूरा शरीर होने के बाद कई बार क्यों मैं जी रहा हूं, ये जीना भी क्या जीना, मर जाऊं तो अच्छा। तो ये शरीर इतना टिकाऊ हो सकता है, देखिए कितना टिकाऊ ये शरीर हो सकता है, इतना भयावह एक्सीडेंट होने के बावजूद ये टिका हुआ है शरीर। कारण क्या है? आत्मा, आत्मा का संग ये शरीर के साथ। इसलिए देखिए मृत्यु हालांकि एक साधारण प्रक्रिया बन चुकी है इस कलयुग में, परंतु फिर भी व्यक्ति का मरना इतना आसान नहीं होता। एक कारण है उसकी आसक्ति शरीर से, कर्म भी, परंतु एक कारण उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा का जो स्वरूप है, जो भगवान यहां पर बता रहे हैं, अमर सच्चिदानंद स्वरूप, केवल उसके संपर्क में यह शरीर इतने वर्षों तक रहा, तो आत्मा के संपर्क में रहने के वजह से यह शरीर इतनी जल्दी नहीं मर सकता। परंतु लोग वो शरीर का संपर्क आत्मा से नहीं कर वो केवल शरीर को ही अमर बनाना चाहते हैं या शरीर को ही अमर मानते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु, वो मूर्खता है। तो इसलिए भगवान जो प्रथम गुण बता रहे हैं आत्मा का, कि नैनम छिंदंती शस्त्राणि, कि ये शस्त्रों से भी काटा नहीं जा सकता। इसके पश्चात अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, ये पंचम स्कंद से कुंभी पाक नरक का एक चित्र है। पाक, पाक जानते हैं ना, जहां मिठाई किसी मिष्ठान में पाक बनाते हैं वो लोग, वैसे कुंभी पाक पकाया जाता है, ऐसी यातना दी जाती है। तो यह उदाहरण दिया गया है कि शरीर को यदि इस प्रकार से भी वहां पर जलाया जाए, परंतु आत्मा, शरीर को भी कुछ नहीं होता, आत्मा छोड़ दीजिए, शरीर को, ये भौतिक शरीर को वहां पर जलाया गया है, तो भौतिक शरीर, हालांकि वो शरीर नरक में विशेष एक भौतिक शरीर दिया जाता है, लेकिन होता है वो भौतिक ही, वो कोई सच्चिदानंद शरीर नहीं है। तो ये उदाहरण दिया गया है कि यदि एक नरकीय शरीर को कुंभी पाक नरक में इतना जलाया जाता है फिर भी वो जलता नहीं, तो सोचिए उसके अंदर का आत्मा, वो कैसे जलेगा? एक भौतिक नरकीय शरीर नहीं जलता तो आत्मा वो कैसे जलेगा? जैसे कुछ वर्षों पहले जो वैज्ञानिक थे वो इस निष्कर्ष पर आ गए थे कि अग्नि में कोई जीवन नहीं हो सकता, कोई कैसे जी पाएगा अग्नि में? परंतु फिर उन्होंने देखा कि फायर बैक्टीरियाज भी होते हैं जो केवल अग्नि में ही जीते, बोला गया फायर बैक्टीरिया। जैसे बंबई में चेंबूर में है वो आरसीएफ, आरसीएफ, तो वहां पर एक घटना ऐसी हुई थी बहुत वर्षों पहले कि वो इतने बड़े बड़े वो जो कंटेनर जिसके अंदर केमिकल और ऐसे ऐसे केमिकल कि वो विषैले पॉइजनस, कि कोई मनुष्य यदि सूंघ भी ले निकट भी आ जाए तो वहां मर जाए वो। तो उन्होंने ये जितने सारे ये केमिकल के कंटेनर्स हैं इनको, इनकी साफ सफाई एक वर्ष इन्होंने की। तो साफ सफाई जब की तो नीचे देखा कि जीवाणु उस कंटेनर के नीचे, केमिकल के अंदर वो जीवाणु जीवित रेंग रहे थे, जिसके फ्यूम से मर जाए कोई वो जीवाणु वहां उसके अंदर सॉल्यूशन में जी रहे थे, और जब उन्होंने वो सब खाली कर दिया तो मर गए। तो अगले श्लोक में जो भगवान कहते हैं सर्वगत कि आत्मा सर्वगत है, वो भी सिद्ध हो रहा है। और जैसे यहां पर भगवान कहते हैं कि नैनम दहति पावक, कि अग्नि से भी उस आत्मा को कोई जला नहीं सकता। हालांकि देखिए जब कोई व्यक्ति को स्मशान भूमि में जलाया जाता है तो बहुत वो ऐसे झंझोड़ने वाली बात होती है, दृश्य होता है कि कैसे वो शरीर जलता है। वो सब श्रीमद् भागवत में उपनिषद में बताया गया है कि कैसे जो केश है पहले जल जाते हैं, फिर ये जो चर्म है वो गलना शुरू होता है जब जलते समय, कैसे ये जो हमारी खोपड़ी है वो फूटती है, ये सब कुछ बताया गया है। बहुत वो डेंजरस और भयावह उसका डिस्क्रिप्शन। लेकिन आत्मा को कुछ नहीं, आत्मा तो चला गया। और लेकिन आत्मा यदि कोई व्यक्ति जीवित भी जल रहा हो, लेकिन आत्मा को कोई किसी भी प्रकार की अग्नि से नहीं जला सकता, ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। आगे जीवात्मा को जल से गलाया नहीं जा सकता, चाहे कितने भी वर्ष शरीर को जल में रखो आत्मा उसके अंदर है। जैसे मछलियां, मछलियों का तो सारा जीवन जल में ही रहता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जब मछलियां अपना शरीर छोड़ती हैं तो अब आत्मा को कहीं पे पंखे में सुखा के फिर दूसरा शरीर दिया जाएगा। अभी तो इतने वर्ष वो जल में थे ना, कि दूसरा जब पृथ्वी पर कोई योनि उसमें आना है उस आत्मा को तो सुखाना पड़ेगा। नहीं, ये उदाहरण है महाभारत में, जब सांदीपनि मुनि उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी कृष्ण और बलराम से, तो गुरु दक्षिणा में सांदीपनि मुनि ने अपने मृत पुत्र की वापसी मांगी। और यह बताया गया है कि सांदीपनि मुनि के पुत्र की मृत्यु हुई थी समुद्र में डूबकर, तो समुद्र में डूबकर उनकी मृत्यु हुई। और एक वर्ष तक, एक वर्ष पहले, और वही आत्मा को भगवान लेकर आए। ऐसा नहीं कि अब दूसरे किसी आत्मा को पकड़ कर ले आए कि देखो सब एक जैसे तो ही ले लो। वही आत्मा, सांदीपनि मुनि के पुत्र के आत्मा को भगवान लेकर आए। और उस उदाहरण से भगवान ने ये जो श्लोक है गीता का, जिसके अंदर भगवान कहते हैं न क्ले दयन्त्यापो, कि आत्मा हालांकि उस तरीके से सॉरी शरीर उस तरीके से मारा गया डूबकर, परंतु आत्मा पर उसका बिल्कुल असर नहीं पड़ा। कौन से जल, इस पदार्थ का असर सांदीपनि मुनि के पुत्र के आत्मा पर नहीं पड़ा। इसके पश्चात अब जीवात्मा को हवा से सुखाया नहीं जा सकता। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला में ये एक असुर जिसका उद्धार भगवान ने किया, शकटासुर, तो गर्ग संहिता के गोलोक खंड में शकटासुर के विषय में बताया गया है कि वैवस्वत मनु इनके काल में हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का भाई, हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच। तो इस उत्कच ने एक उत्पात किया एक दिन, क्योंकि बेटा किसका था? हिरण्याक्ष का था। तो इस उत्कच ने किया क्या कि लोमश ऋषि एक आश्रम में रह रहे थे, लोमश ऋषि, तो लोमश मुनि इनके आश्रम के जितने पेड़ थे उनको सब चूर्ण कर दिया, चकनाचूर कर दिया, ऐसे उपद्रव कुछ मस्ती। तो लोमश ऋषि इन्होंने शाप दिया कि उसे बहुत गर्व था अपने शरीर के ऊपर, तो उसे श्राप दिया कि तुम्हारा शरीर हवा में परिणित हो जाए, वायव्य शरीर मिल जाए, तो मतलब कोई स्थूल शरीर हो ही ना, केवल हवा। तो अब ये उत्कच हिरण्याक्ष का पुत्र, ये सुदृढ़ शरीर वाला, अब बस हवा, यहां वहां बस हवा घूम रही। तो बहुत इसे तकलीफ हुई उस शरीर में, वो एक शरीर था, आत्मा उसके अंदर था, सोचिए आत्मा उस वायव शरीर के अंदर था। तो ऐसे जो उपद्रवी राक्षस होते हैं उनको ये ऋषि मुनि कुछ वरदान भी दे देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, भगवान जब अवतरित होंगे ना द्वापर युग में तब जाकर तुम्हारा उद्धार कुछ हो पाएगा। तो ये कुछ 15 करोड़ वर्षों तक उस शरीर में था। कौन से शरीर में? हवा। हवा के शरीर में 15 करोड़ वर्षों तक, और 15 करोड़ वर्षों के पश्चात फिर ये शकट के रूप में वहां पर भगवान के पैरों द्वारा लात मारा गया और फिर उसके आत्मा को मुक्ति मिली। तो गर्ग संहिता में ये जो हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच, इसकी जो कथा है, इसके द्वारा ये सिद्ध हो रहा है कि इतने 15 करोड़ वर्षों तक इसका आत्मा हवा के संपर्क में ला लेकिन सूखा नहीं। ये जो भगवान यहां पर बोल रहे हैं कि जीवात्मा को हवा से सुखाया नहीं जा सकता, देखिए कितने वर्षों तक ये आत्मा इसका हवा के संपर्क में रहा, लेकिन फिर भी उसका जो स्वरूप है वो अनभिज्ञ रहा। तो यहां पर अब इन 4 गुणों को प्रदर्शित करते हुए भगवान आत्मा के, आत्मा का एक विज्ञापन भगवान कर रहे हैं। तो यदि ये देखा जाए कि भगवान द्वारा आत्मा का विज्ञापन हो रहा है ना, एडवर्टाइजमेंट, तो यदि बताया जाए कि जीवात्मा का टिकाऊपन बता रहे हैं भगवान, जैसे कोई सेल्समैन होता ना कि ये प्रोडक्ट कितना टिकाऊ है, तो ये सब जितने ये 4 गुण आत्मा के बताए भगवान ने कि कलयुग में हम कैसे समझेंगे, जैसे कोई सेल्समैन कोई कपड़ा वो सेल कर रहा तो बताता है कैसे इसको काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, इसको कोई भिगा नहीं सकता, इसको भिगा तो धोना तो पड़ेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कोई भिगा नहीं सकता, कोई उसको ना सुखा नहीं सकता, तो जो कस्टमर है उसके मन में इतना टिकाऊ। जैसे एक हमारे मित्र थे, वो कुछ शॉपिंग के लिए एक बार गए हुए थे दिल्ली में, वो जीन्स पैंट खरीद रहे थे, तो पूछ रहे थे अब जो जीन्स पैंट कितना टिका, वो बोला पैर कट जाएगा ही नहीं कटेगा। तो मैं बगल में खड़ा था, वो मतलब उसका सेल्स टेक्निक थी, आपका पैर कट जाएगा लेकिन जीन्स पैंट फटेगा नहीं। बोला अरे तो पैर कट जाएगा तो पहनूंगा किस पे इसको। तो यहां पर देखिए भगवान एक दृष्टिकोण से एडवर्टाइज कर रहे हैं कि अर्जुन ये जो प्रोडक्ट है मेरे द्वारा बनाया गया, आत्मा भगवान द्वारा बनाया गया, ममो इमांशु जीव लोके, उसका टिकाऊपन देखो। कि तुम्हारे किसी के भी शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब हम यदि देखें कि यदि भगवान यहां पर विज्ञापन कर रहे हैं आत्मा का, और अगले श्लोक में भी भगवान करें, तो विज्ञापन के कुछ तरीके होते हैं। जैसे कोई यदि विज्ञापन करता है किसी वस्तु का, तो वो वस्तु के गुण बताता है ना, किस वस्तु में क्या क्या गुण है। जैसे टीवी में कितने सारे ये विज्ञापन आते हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि ये वस्तु लेकर इस वस्तु में इतने सारे गुण हैं, आज तक ऐसी कोई वस्तु बनाई नहीं गई, इतने सारे गुण एक साथ, पहले वो 1 in 1, फिर 2 in 1, फिर 3 in 1, फिर 4 in 1, कितना सब एक के ही अंदर इतने सारे गुण हैं। तो वस्तु एक विज्ञापन में वस्तु के गुण बताए जाते हैं। तो यहां पर भगवान आत्मा को यदि उस वस्तु की तुलना दें, तो भगवान आत्मा के कितने सारे, अभी तक कितने सारे गुण बता चुके हैं भगवान। फिर वस्तु के टिकाऊपन के साथ उसका सस्तापन, कि ये इतना टिकाऊ वस्तु और लेकिन मैं केवल आपके लिए कम से कम दामों में, केवल वो, जैसे वो व्यापारी क्या बोलता है, केवल आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कोई इसमें मेरा फायदा, कोई मुनाफा नहीं। तो यहां पर देखिए कि ऐसा आत्मा, हमने कौन सा प्रयास किया कि हमें इस प्रकार का आत्मा, ऐसा स्वरूप मिले। तो ये भगवान की कृपा कि भगवान ने ऐसा टिकाऊ आत्मा हमारे बिना किसी इच्छा के, इच्छा हमारी ये शरीर को कितना टिकाऊ बनाने के लिए लगे हुए लोग, कि शरीर ऐसा बने कि इतना टिकाऊ, कट ना सके, जल ना सके, ये ना हो, वो ना हो, लेकिन फिर भी ये सब कुछ शरीर के साथ होता है। तो आगे जो व्यक्ति विज्ञापन करता है वो कहता है, वस्तु के होने से आपको क्या फायदे होंगे। तो यदि अब हम इसकी तुलना भक्ति से करें कि कैसे भगवान ने भक्ति का विज्ञापन अपने नाम गुण रूप लीला द्वारा किया है, तो भक्ति के गुण, भक्ति कितनी टिकाऊ है और कितनी आसानी से, कितने सस्ते में भगवान ये हरिनाम संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु तो जारे देखो तारे को कि देते रहो मुफ्त में, और उसके फायदे यदि हम श्रीमद् भागवत, उपनिषद, भगवद गीता, पुराण, इन सब को लें, तो कितने फायदे बताए गए हैं आत्म साक्षात्कार के और भगवान की भक्ति में लगने के, कितने फायदे बताए गए। उसका एक अलग टॉपिक हो सकता है कि ये कितने फायदे हैं भक्ति करने के या आत्म साक्षात्कार के, आत्मज्ञान, सांख्य योग में स्थित होने के। तो एक व्यक्ति जो विज्ञापन करता है, क्योंकि हम इस सबसे वाकिफ हैं, इस कलयुग में जो इतना सब मीडिया जो विज्ञापन कर रहा है, हम इस सबसे वाकिफ हैं कि वो क्या क्या पैंतरे अपनाते हैं अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, और हमको पता है कि वो माल उल्लासनगर का है, वो 4 दिन भी नहीं टिकने वाला है, लेकिन उनका एडवर्टाइजमेंट इतना पक्का होता है कि वो उससे हम कन्विंस होकर खरीद लेते। लेकिन भगवान जो इतना एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसमें हमें हर टाइम डाउट रहता है, शक रहता है, संशय। आगे भगवान कहते हैं, अन्य ग्राहकों का क्या मत रहा है। एक जो सेल्समैन रहता है वो बताता है ना, जैसे आजकल वो आप देखो बिलबोर्ड होर्डिंग में कोई बहुत सेलिब्रिटी वो कैडबरी लेके वो खा रहा है, तो सबको लगता है कि ये कैडबरी खा रहा है तो मुझे भी कैडबरी खानी चाहिए। अब यदि उसके व्यक्तिगत जीवन में देखो तो डॉक्टर ने उसको मना किया होगा डायबिटीज की वजह से, उसको देखना भी मत, लेकिन उसको पैसे मिल रहे हैं इसलिए लेके खड़ा है वो। तो कई बार हम वो प्रोडक्ट से इतना ज्यादा प्रभावित नहीं होते, लेकिन वो प्रोडक्ट कौन लेके खड़ा है ना। सचिन तेंदुलकर लेके खड़ा है उसको, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में तो वो उसको छूता भी नहीं होगा, लेकिन वो लेके खड़ा है तो हां उसको लेना चाहिए। तो भगवान क्या ऐसे उदाहरण नहीं दे रहे भगवद गीता में, असित देवल व्यास ऐसे बड़े बड़े महाजन जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है, और श्रीमद् भागवत में ऐसे ऐसे महाजन है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है। तो यदि हम उनके जीवन को देखें कि उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किया, और उनका क्या मत रहा है, रिव्यूज होते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदो उससे पहले रिव्यूज पढ़ते हो, तो रिव्यूज उनके रिव्यूज क्या है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में। तो ये एक और तरीका है जिससे हम कन्विंस हो आत्म साक्षात्कार और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में। और अंततः ये बहुत जरूरी है, वस्तु के न होने के भयाव परिणाम। यदि बाकी सब चीज से कन्विंस न हो तो कई बार जो सेल्समैन होते हैं या जो भी विज्ञापन करते हैं उसमें ये बताते हैं कि यदि ये प्रोडक्ट आपके पास नहीं है तो कैसे आपका जीवन व्यर्थ गया, आपका जीवन मुश्किल हो सकता है ये प्रोडक्ट आपके पास नहीं है। तो सोचिए, भक्ति में नहीं लगने के वजह से, आत्म साक्षात्कार में नहीं लगने के वजह से क्या क्या भयावह परिणाम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मान लो कि कोई सेल्समैन हमारे घर पर आए कोई प्रोडक्ट लेके और कहे कि ये प्रोडक्ट यदि आप नहीं लोगे तो फिर से 9 महीने माता के गर्भ में जाना पड़ेगा किसी के, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट आप नहीं ले रहे हैं। तो साम दाम दंड भेद ये न के न प्रकारेण वो किसी न किसी तरीके से वो प्रोडक्ट को आपको बेचना चाहता है। तो यहां पर भगवान यदि आत्मा का इस प्रकार से विज्ञापन कर रहे हैं कि आत्मा का ऐसा टिकाऊपन, आत्मा के ऐसे गुण हैं, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अव्यय है, अक्षय है, और यहां पर ये सारे गुण बता रहे हैं, आगे भी कितने सारे और गुण बताते रहेंगे भगवान, तो धीरे धीरे हमारे मन में ये आत्मा जो है इसको कम से कम जानने की इच्छा तो जागृत होनी चाहिए। और ये बात नहीं है कि विज्ञापन के वजह से हमारे अंदर रुचि पैदा नहीं होती उस प्रोडक्ट के बारे में, होती है। भौतिक प्रोडक्ट्स के बारे में इतनी रुचि पैदा होती, तो क्यों नहीं यहां पर हम भगवान के वाक्यों को सत्य मानकर उसका साक्षात्कार प्रारंभ करें। तो अंततः यदि ये पूछा जाए कि भगवान को क्या आवश्यकता है विज्ञापन की, भगवान को क्या आवश्यकता है विज्ञापन की, हां ठीक है इस भौतिक संसार में किसी को अपना धंधा बढ़ाना है, व्यापारी को किसी कंपनी को, तो वो अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करता है, लेकिन भगवान को ये सब शास्त्रों के द्वारा आ आकर अपने अवतारों के द्वारा प्रतिनिधियों के द्वारा ये सब कुछ विज्ञापित करने की आवश्यकता क्या है। तो सर्वप्रथम भक्ति के विषय में जागरूकता, जैसे कि यदि मार्केट में वॉशिंग मशीन आई है और पहले वॉशिंग मशीन आने से पहले सभी लोग बस बाल्टियों में डुबो डुबो के कपड़े धोते थे, तो अब लोगों को जागरूक करने के लिए, टू मेक देम अवेयर कि आपको अब बाल्टियों में कपड़े धोने की जरूरत नहीं, अब आपके कपड़े इसमें आप धो सकते हैं, तो विज्ञापन वो क्यों करता है व्यक्ति या कंपनी, अवेयरनेस, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो वही सिद्धांत यदि हम यहां पर भी समझें कि इस भौतिक संसार में हम इतने अज्ञान में हैं कि हमें वो जागरूकता है ही नहीं कि भक्ति के क्या गुण हैं और उसके फायदे क्या हैं। सो द फर्स्ट रीजन व्हाई कृष्णा एडवर्टाइजेस अबाउट भक्ति और अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस amongst the ignorant conditioned living entities. जागरूकता. इसके पश्चात भक्ति के विषय में रुचि जागृत करने हेतु अवेयरनेस के पश्चात फिर जो विज्ञापन करता है उसका दूसरा उद्देश्य क्या है कि उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो, रुचि. तो इसलिए जो वो क्रम है, श्रद्धा, तत्पश्चात साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि. तो जब हम उस क्रम से भक्ति को समझते हैं जो भगवान प्रस्तुत करते हैं आकर भौतिक संसार में, तो यदि हमारे अंदर रुचि पैदा नहीं हो रही तो हम वो प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं कभी. कोई भी व्यक्ति किसी दुकान में जाकर कोई वस्तु को कब खरीदता है? केवल अवेयरनेस के वजह से नहीं, अंदर उसके रुचि जागृत होती है कि ये टूथपेस्ट, इतना ये टूथपेस्ट के विषय में मैंने टीवी में देख रखा है. तो दिखाते हैं ना कि ऐसे दांत ऐसे एकदम चमचमाते कि लाइट की भी जरूरत नहीं. तो फिर उस व्यक्ति के मन में रुचि होती है कि भाई मेरे भी दांत ऐसे अगर ये टूथपेस्ट घिसने से होंगे. तो जब वो उसको देखता है तो उसके अंदर वो रुचि. तो इसलिए हमारे अंदर रुचि जागृत करने हेतु, तो हमारे अंदर रुचि जागृत क्यों करनी पड़ती है भगवान को? क्योंकि नहीं है, उल्टा है, अरुचि उल्टा है बिल्कुल. तो हमारे अंदर रुचि जागृत करने के लिए देखिए भगवान को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है. स्वयं आके हर युग में अपने प्रतिनिधियों को भेजकर मंदिरों, तीर्थ स्थानों, शास्त्रों को प्रसाद, क्या क्या भगवान ने प्रयोजन नहीं किए. ये सब किस लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं कि मेरे धाम वापस आ जाओ भाई, आप ही का धाम है. उस दृष्टिकोण से यदि देखें तो देखिए भगवान. और हमारे एक आचार्य बताते हैं कि भगवान इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं. ऐसा नहीं कि हमने जो गलती की आध्यात्मिक संसार में तो भगवान ने चलो बाहर निकलो यहां से, दफाओ, चेहरा भी मत दिखाना, तो हमें आध्यात्मिक संसार से धक्के मार के फेंक दिया और भगवान फिर अपने बस जो पार्षद है उनके साथ लीला कर रहे हैं वहां पर. नहीं, भगवान ने अपना ये जिम्मेदारी मानी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं, कि ये जीव मेरे अंश मुझे छोड़ के गए, ये मुझे छोड़ के गए होंगे अज्ञान में, वहां पर इंद्रिय भोग में लगे होंगे, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है भगवान होने के नाते कि मैं फिर से इन्हें इनके धाम में, जहां पर ये वास्तविक रूप में स्थित हो सकते हैं, वहां पर इनको लेकर आऊं. तो देखिए ये बहुत ही एक दिल को छू जाने वाला एक कारण है कि भगवान विज्ञापन क्यों करते हैं आत्मा का, आत्म साक्षात्कार का, कि भगवान समझते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, दिस इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अंततः ये बहुत सुंदर उदाहरण बताया गया है कि भगवान की जो कृपा शक्ति है वो भगवान की भक्ति का विज्ञापन करे बिना रह नहीं सकती. चाहे भगवान कितना भी प्रयास करें स्वयं कि मुझे कोई सरोकार नहीं इन जीवात्माओं से जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन भगवान की कृपा शक्ति भगवान के आदेशों का उल्लंघन करके जीवात्माओं को यहां पर भगवान के गुणों का बखान कर फिर से भगवत धाम लेकर जाती है भगवान की कृपा शक्ति. और भगवान की कृपा शक्ति कभी भी भगवान से अलग नहीं हो सकती. तो ये सब कारणों के वजह से कम हम अपना मुख तो करें. ये जैसे कि ये कोई गलत उदाहरण नहीं है. भक्ति विनोद ठाकुर जिनका आविर्भाव भी हम मनाने वाले हैं संडे को, तो भक्ति विनोद ठाकुर इन्होंने भी अपने भजनों में ये लिखा है, गाया है कि नित्यानंद प्रभु, इन्होंने एक सेल्समैन की भूमिका निभाई, दलालेर गीत, दलालेर, वो उसका उसका शीर्षक भी है दलाल बने हो दलाल। उस गीत का शीर्षक है दलालेर गीत, कि वो दलाल बने। किसका दलाल बने हैं? चैतन्य महाप्रभु की भक्ति को देने, हम सबको देने के लिए उन्होंने मार्केट प्लेस एक बाजार खोला है, कृष्ण प्रेम का बाजार खोला है, और वहां पर वो विज्ञापन कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आओ आओ यहां पर कृष्ण प्रेम टिकाऊ सस्ते में, ये सब कुछ जो भगवान यहां पर श्लोक में बोल रहे हैं, ये सब कुछ वो विज्ञापित करते हुए बद्ध, हम सब बद्ध जीवात्माओं को आकर्षित कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान इतने सारे श्लोकों में आत्मा के विषय में क्यों इतना विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। ये विस्तार से इसलिए वर्णन कर रहे हैं ये सब कारणों की वजह से कि हमारे अंदर जागरूकता लाना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार के प्रति रुचि, और भगवान ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और अंततः भगवान की जो कृपा शक्ति है वो इसका एक स्वरूप है कि वो भगवान की भक्ति और हमारा जो उद्धार है उसका प्रयोजन हमारे सामने लाकर प्रस्तुत अवश्य करे। और इसका जो अगला श्लोक है 24वां श्लोक इस अध्याय का, उस श्लोक में भी अब तक भगवान यही आगे दोहराएंगे फिर से कि कैसे ये आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को आप उसको घोला नहीं जा सकता। एक और नया गुण कि इसको घोला नहीं जा सकता, यहां पर गलाया नहीं जा सकता, भगवान कहते घोला भी नहीं जा सकता। तो भगवान मान लो कि अगले श्लोक तक थोड़ा भूल गए थे कि मैं कुछ भूल रहा हूं क्या, प्रोडक्ट का कुछ बेनिफिट्स या इसके गुण, तो भगवान इसको घोला भी नहीं जा सकता इसको फिर से। तो फिर आगे और भी उस श्लोक को लेकर भगवान आत्मा का अब तक विज्ञापन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न?